तुम अंदर जाओ।
मेहरबानी करके आप लोग खामोश रहें, यहाँ से जाएं। आप लोग खामोश रहें, आप यहाँ से जाएं। आप समझते क्यों नहीं यहाँ पर? मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से जाएं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेहरबानी करिए आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से चले जाएं। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते?
बाबा
सलाम। तुम ठीक हो?
वक्त अच्छा गुजरा? मैंने सोचा मेरा इतना ख्याल तो रखोगी कि अपने भावच के यहाँ से मेरे लिए भी कुछ खाने को तो लाओगी।
ननद के घर नहीं थी, मतलब ये कि खाना वहां नहीं खाया।
तो फिर कहाँ थी? तो क्या तुम फिर शायस्ता से मिलने गई? तुम्हें अदाकारी का बहुत शौक है ना?
मुझे अपनी घर गृहस्थी का शौक है। किसको शौक है कि अजनबी जगहों पर इधर उधर भटकता फिरे? मेरा झगड़ा मेरे शौहर को लेकर है, उसकी जिंदगी और तंदुरुस्ती के बारे में। इन सब का पता लगाने के लिए मैदान में तो कूदना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें हर मामले में साथ लेकर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें इस मामले में ज्यादा नहीं घसीट सकती।
क्यों क्यों नहीं कर सकती? क्या यह तय नहीं था कि तुम कावे को फोन करोगी?
ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। आज अदालत में मैंने उसे वादा किया था कि उसे फिर तकलीफ नहीं दूंगी। नहीं चाहती कि उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। मतलब यह कि जब भी चाहती हूँ मेरे लिए कुछ करे तो डर लगा रहता है कि शाइस्ता इसके लिए कोई ऐसी वैसी मुश्किल खड़ी ना कर दे। मैं अहमद रजा के ज्यादा करीब हूँ, इसलिए ये रिस्क मैं खुद क्यों ना उठाऊं। आज का दिन बड़ा लंबा था। कल मुझे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। जिस रात अहमद रजा गायब हुआ उस रात वो शाइस्ता से मिलने वाला था।
शाइस्ता के साथ?
कहते हैं एक गाड़ी आई और उसको सवार करके ले गई। एक बेघर आदमी जो उसी बिल्डिंग में सोता है, उसने उस ड्राइवर को देखा था। ऐसा लगता है कि वो गाड़ी शाइस्ता की थी।
उस बेघर आदमी ने कहा कि शाइस्ता की गाड़ी थी?
नहीं, दूसरों का कहना है।
अच्छा,
मैं भी बाकी की तलाश में हूँ।
तुम्हारी दोस्त है क्या? क्या वो जानती है कि ये चाय किस पैसे से खरीदी गई है? ऐसा ना हो कि कल शिकायत करने बैठ जाए और आखरत की तलबगार हो जाए। देखो, हमारा नसीब नहीं खुलने वाला, और इस तरह की जिंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है। क्यों
नहीं? बिल्कुल होने वाला नहीं।
ए, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, वो भी अपनी दोस्त के साथ?
मेरी दोस्त की वजह से, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है, वरना तुमको झेलना बहुत मुश्किल है।
देखो, घर का खर्च है, किराया है, पानी बिजली टेलीफोन का बिल है, पेट का खर्चा है।
मगर खर्च?
हाँ, मैं ही तो खर्च कर रही हूँ। इस महीने में दे दूंगी, जब तक बेकार हूँ मैं दूंगी। देखो, ये कि मैं जब किसी की जेब में हाथ डालती हूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल अहमियत नहीं रखता। अगर कोई मेरे सामने खड़ा होकर बयानबाजी करे, मुझे गंदा और खराब समझे तो मुझे बुरा लगता है।
मगर तुम गंदगी के बारे में ही सोचती हो।
नहीं, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मगर तुम भरोसा भी करो और नाराज भी हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। एक तो तुम्हारा खर्चा भी दूं और दूसरी तरफ तुम्हारी इस अदाकार दोस्त का भी खर्चा दूं। तुम अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो मेरी जान मेरी जेब पर भरोसा क्यों करती हो?
एक आदमी ने उन लोगों को फोन किया कि आप खरीदार लाए हैं और मकान को बेच रहे हैं, आप सब कुछ पर हाथ साफ करके निकल जाना चाहते हैं।
कौन?
मालूम नहीं, बूथ से फोन आया था। एक आदमी ने जिसके पास नुकसान उठाने वाले का नंबर था फोन कर डाला। ये एक ऐसी गलती है।
देखिए इंस्पेक्टर, मैं खाने की मेज पर अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। वो घर मेरा घर है और उस घर में रहने वाले लोग मेरे अपने हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अपने घर वालों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता हूं। अगर अब की बार कोई भी मेरे घर और घर वालों के पास फटका
भी
तो
क्या करेंगे? हाँ, आपके ख्याल में वो लोग कौन हैं? फलसफी हैं? आपसे उनकी कोई दुश्मनी है? नहीं जनाब शाइस्ता, उनकी दौलत लुट गई है, वो कमजोर हैं, उनकी जेबें कमजोर हैं। एक मामूली गलती का मतलब उनकी पूरी जिंदगी का सरमाया लुट जाने के बराबर है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी है। वो मजबूर और कमजोर हैं, जज्बाती हैं, गमजदा हैं।
ये मेरी मुश्किल नहीं है।
क्यों नहीं है? ये आपकी परेशानी है, उन सब की परेशानी है, हम जैसे पुलिस वालों की परेशानी है। हम सभी इसमें शामिल हैं, इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा।
देखो इंस्पेक्टर, अब कोई भी मेरे घर वालों के आसपास ना फटके।
जनाब
सलाम, मैं जनाब शाइस्ता का वकील हूँ।
आपका मुवक्किल भी इस कमरे में है, मार खाई भी है और मारा भी है। आप ही कुछ करें, किसी तरह इस मामले को निपटाएं।
अच्छी बात है।
हाँ, अब्बास फरहान का पता चल गया है, वही जिसके अकाउंट में 8 अरब डाला गया है और निकाला गया है। अलबत्ता पता तो चल गया है, मगर इस हालात में नहीं कि जैसे हमको उम्मीद थी।
सलाम,
इसका नाम नाहिद रखा गया है।
बाबक ने मुझे बताया था, कहा था यहाँ आ जाऊं अगर मसरूफ ना हो तो। वो खुद तुम्हारे डैड के पास है। इन 7 दिनों में तुम्हारे आसपास बहुत लोगों की भीड़ थी। इस बीच में आना और आकर हमदर्दी जाहिर करना, ये सब दिखावे जैसा लगता। इस बीच वक्त नहीं मिल पाया कि नाहिद खानम की मौत पर दुख जता सकूं, नहीं हो सका कि ताज़ियत पेश कर सकूं और बता सकूं कि वो कुछ और ही थी।
हाँ, मेरी माँ की शख्सियत ही कुछ और थी।
कुछ भी इस तरह की जिंदगी जैसा नहीं है। एक आता है, एक जाता है, एक आंख खोलता है और एक बंद करता है। एक खानदान के लोग किसी का इंतजार करते हैं और दूसरे के पास खानदान नहीं होता। एक के पास हक है और दूसरे पे नहीं।
वो तीसरी है, उस पलंग के बाजू में उसे लिटाया गया है।
जब तुम इतनी ही बड़ी थी, मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी थी सुनी भी थी देखी भी थी। मैं और नरगिस जान, नरगिस जान तो याद होंगे तुम्हें, मैं और नरगिस जान तुम्हारी फूफी फ्लोर के घर के पीछे वाले हिस्से में रहा करते थे। तुम्हारी माँ नाहिद खानम ने नरगिस जान से कहा कि तुम्हारे कान में अजान कहे। जब नरगिस जान अजान कह रही थी तो मैं वहां मौजूद था, और उस वक्त मैं 7 साल का था।
कितनी अच्छी बात है कि तुम्हें यह सब कुछ अब भी याद है।
सब कुछ तो मुझे याद नहीं, बस वही बातें याद रह गई जो जरूरी थी। सलाम, सलाम अलैकुम।
5 महीना हो रहा है कि अब्बास फरहानी की मौत हो चुकी है। दर हकीकत 8 अरब रुपये की रकम एक मरे हुए आदमी के अकाउंट में डाली गई है। उसके शनाख्ती कार्ड से गलत फायदा उठाया गया है। उसका शनाख्ती कार्ड उसकी मौत से पहले एक वीडियो क्लब में था। दुकानदार भी सब लेकर वहां से जा चुका है।
शनाख्ती कार्ड खो जाने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है या नहीं?
कहते हैं कि खबर दी गई थी।
इस वीडियो क्लब वाले के बारे में जो बता रहे हो, पता लगाया वो कौन है और अभी कहां है?
ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि पता लगाना चाहिए।
सोचोगे? खुद को तकलीफ में मत डालना।
मैं कहूंगा वीडियो क्लब वाला हमारा पता ढूंढे।
कहूंगा कि अब्बास फरहानी आकर बताए कि उसका कार्ड खो जाने की इत्तला पुलिस को दी गई है या नहीं। कहूंगा कि वो आदमी जिसके पास कर्जदार का नंबर था और फोन करके ये झमेला खड़ा किया, आकर ऐलान करे और खुद की शनाख्त बताए और अपने इस काम की वजह बयान करे। हम तुम अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, चाय का घूंट लेते रहेंगे और हर महीने तनख्वाह की रसीद का इंतजार करेंगे, ठीक है ना?
ये सारे के सारे लोग गमजदा हैं, अपनी 20 साल की कमाई लुट जाने पर सोगवार हैं। अभी इसी वक्त से इस ऑफिस में आम शोक का ऐलान करता हूं और इस शोक का मालिक मैं हूं। अगर सुस्ती हुई, लापरवाही बरती गई, अगर अनसुनी की गई तो मुझसे वास्ता पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं?
जी जनाब।
कर्ज ख्वाहों के पास आज जो फोन आया, नहीं मालूम क्यों हुआ, किस मकसद के तहत हुआ, इसका मकसद सामने आना चाहिए। वो कौन था जिसने फोन किया? मुझे एक लिस्ट चाहिए, शाइस्ता के दोस्तों की, दुश्मनों की। एक लिस्ट अहमद रजा बाबाई के तेहरान और उसके शहर में दोस्तों और दुश्मनों की, दूसरी लिस्ट तेहरान और उसके शहर में उसकी बीवी के वाकिफकारों की। समझ में आई बात?
जी जनाब।
सलाम।
सलाम।
आप ठीक हैं?
हेलो, आप? कहते हैं खोजस्ता से काम है, एक आदमी है।
हेलो, आप हैं? क्या हुआ?
तुमने कहा सब ठीक ठाक है?
मैं कहता हूं कि अमनो सुकून कहां?
तुमने कहा अहमद रजा के घर, अहमद रजा के पास। अहमद रजा का कुछ पता ही नहीं। पुलिस कहती है कि अहमद रजा नहीं है। वो घर पर मेरे पास आए, मेरे भाई के घर गए, उसके भाई के घर गए, पूरे शहर रिश्तेदारों और वाकिफकारों के घर गए। क्या बात है बेटी?
मैं नहीं जानती, नहीं जानती डैड। जब मैं यहाँ आई तो कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?
मैं क्या बताती, मुझ पर जो गुजर रही है बताकर आपका भी चैन सुकून बर्बाद कर देती।
क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं अपना चैन और सुकून बर्बाद कर देता।
डैड, जैसा लोग कह रहे हैं अहमद रजा वैसा नहीं है।
फिर वो है कहाँ जो खड़ा होकर कह सके कि मैं ऐसा नहीं हूँ? वो कहाँ है जिसकी तलाश में पुलिस हर कोना छान रही है? उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्यों? कुछ है ऐसा जो कुछ हो रहा है। तुम आ रही हो या मैं आऊँ तुम्हारे पास?
डैड नहीं आ सकती, नहीं आ सकती मैं।
लेकिन मैं आ सकता हूँ। कल मैं तेहरान में रहूंगा। वो कौन सी जगह है जहाँ तुम हो?
देखिए जी, ये जाती मिल्कियत है, मैं तुम्हें खाली करने नहीं दूंगा।
कैसे खाली करने नहीं देगा?
तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अभी बताता हूँ।
अरे हड्डी पसली तोड़ दूंगा वरना। अरे 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 तोड़ दूंगा हड्डी पसली। लग जाएगा, हटो, लग जाएगा, भागो यहाँ से, अरे भागो, लग जाएगा, भागो यहाँ से, अरे छोड़ूंगा नहीं, अरे भागो, भागो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, अरे 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 छोड़ूंगा नहीं, अरे छोड़, अरे लग जाएगा, अरे छोड़ दे भाई।
माफ करें जनाब, जनाब आप जाग रहे हैं? जनाब, वहाँ बिल्डिंग में एक लाश पड़ी हुई है।
क्या हुआ?
बिल्डिंग में एक लाश है।
मैं बदबख्त हो गया।
कहानी हमेशा एक जगह से शुरू होती है। मेरी कहानी अमीरी से शुरू हुई। फ्लोर का बेटा होना, जहांगीर खान का नवासा होना, फ्लोर और तुम्हारे डैड की कहानी भी यहीं से शुरू होती है कि इब्तदा मुझसे हुई है। मगर तुम्हारी मां की कहानी बिल्कुल अलग थी। उनकी कहानी एक खातून होने से शुरू हुई। नाम के पहले और आखिर में मोहतरमा का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता। नाहिद खानम, मोहतरमा नाहिद। खानम कहा करते थे चूंकि वाकई में खानम थी। इस कदर मोहतरम कि उनसे फ्लोर को जलन हुआ करती थी। जब मैं छोटा था तब फ्लोर को देखकर यह सोचा करता था कि फ्लोर खुशकिस्मत नहीं है, वाकई में नहीं थी। जानती हो मेरी बहन, इश्क की कहानी क्यों जबान जद है? इसलिए कि फ्लोर को कभी भी मेरे डैड से मोहब्बत ना थी। कहानी यह है कि मैं भी अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, मगर तुम्हारे डैड प्यार करते थे, नाहिद खानम के आशिक थे। वो नाहिद खानम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसके लिए ज्यादा सलाहियत की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक नजर काफी थी। एक नजर देखते ही उनके खातून होने के सिलसिले में पता लग जाता था वो कैसी है। मैंने जिंदगी में जो पहली बार अफसोस किया वो नाहिद खानम के जाने का था। दूसरी नाहिद खानम पैदा नहीं हो सकती।
फ्लोर आंटी ठीक है?
अब फ्लोर वो फ्लोर नहीं रही। मेरी मां के नाम सिर्फ 30 किलो गोश्त और हड्डी बच गई है, एक बलौती रंग की छड़ी और खुद से किया हुआ वादा कि याद रखना कि तुम्हें सबसे नफरत है।
जाती हूं देखती हूं डैड जागे हैं कि नहीं। सलाम।
सलाम बेटी।
क्या अनुश को आए हुए आधा घंटा हो रहा है।
सलाम मामू।
सलाम। रोया तकलीफ ना हो तो दरवाजा बंद कर दो। जब होना चाहिए तब नहीं होते, जब नहीं होना चाहिए तो आ जाते हो।
किसी काम से सफर में गया हुआ था मामू।
हालात बहुत बिगड़ चुके हैं बच्चे, इतने खराब कि कुछ लोग घर का दरवाजा उखाड़ना चाहते थे।
सब ठीक हो जाएगा मामू, क्योंकि आप हक पर हैं।
हेलो
जनाब। सलाम, अबुल कासिम हूं।
अबुल कासिम कौन है?
आपका खादिम, बिल्डिंग का चौकीदार, जमीन का चौकीदार। जनाब यहां एक लाश पड़ी मिली है, पुलिस आई है।
मरकज, आप ठीक हैं? कार्रवाई पूरी हो गई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको भेजी जा रही है।
जनाब शाइस्ता आ गए। ये आदमी हमेशा यहीं पड़ा रहता था, लात घूंसे का कोई असर नहीं होता था। इस खातून ने ढूंढा इसको।
मैं भी इसको ढूंढते हुए यहाँ आई थी जनाब शाइस्ता, मगर ये मुर्दा पाया गया।
इस जमीन और यहाँ की हर चीज का मालिक मैं हूँ।
जनाब आपकी बिल्डिंग आधी अधूरी है, इस तरह खुदा के हवाले नहीं किया करते कि कोई भी इसमें अपना बसेरा बना ले।
आखिरी मर्तबा जब अहमद रजा को देखा गया इसी जमीन पर था, आपसे उसकी मुलाकात होने वाली थी।
इस इमारत में चौकीदार रहा करता था, ये रहा।
वो मेरी बात नहीं मानता था जनाब।
आपने उस मुलाकात के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया?
इसकी मौत कैसे हुई?
पता नहीं है, बाद में पता चलेगा।
कयासी ने कहा था कि
अब मुझे क्या करना होगा?
मामूजान, क्या आपके वकील को खबर करूं?
आप सुन क्यों नहीं रहे हैं जो मैं कह रही हूं? लोगों ने आपकी गाड़ी को देखा है, आपसे मुलाकात होने वाली थी।
कैसी मुलाकात? ये कैसी फालतू बात है? ऐसा क्यों होता है कि जहां तुम और तुम्हारा शौहर पैर रखता है वहां कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है? यहां से मुझे पैसा मिलने वाला था, लोगों के लिए घर बनने वाला था, किचन बनने वाला था, ना ये कि लाश पाई जाए। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? तुमने और तुम्हारे शौहर ने मुझे जलील करके रख दिया। हर घड़ी मेरे सामने हो, मेरी नजरों के सामने हो।
ये लो, एक गिलास पानी जो दिया उसकी वजह से मुझे निकाला ना जाए तो अच्छा है। मैं अजीत तो नहीं हूं, चाहे धोखेबाज ही क्यों ना हो, प्यासा तो नहीं रखना चाहिए ना।
कहाँ?
किसी ऐसे के पास जा रही हूं जो मेरी बात सुन सके।
किसके पास?
पुलिस, पुलिस के पाश।
आप ही ने लाश देखी थी?
हाँ।
आपको हमारे साथ चलना होगा।
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक सवाल।
अहमद रजा बाबाई के बारे में कोई खबर है?
जी नहीं।
ठीक है, शुक्रिया कि आप आए, आप जा सकते हैं। सिर्फ एक सवाल जो कि ज्यादा अहम नहीं है, वो ये कि किस्तों की अदम अदायगी की वजह से बैंक आपकी दुकान नीलाम करना चाहता था, लेकिन अचानक ही आपके अकाउंट में 60 मिलियन आ गए और आपने अपनी दुकान बचा ली। कहां से आई ये 60 मिलियन? इंतजार कर रहा हूं।
अहमद रजा बाबाई से लिए।